एबीसी इंडिया बोल तारीख 16 मार्च दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप से ठीक पहले एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी। जीत के लिए भारतीय टीम ने कई प्रयोग किए, लेकिन कितने सफल हुए ये प्रयोग? क्या मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन भारत को विश्व चैंपियन बना पाएगा? यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और विश्लेषक मलय नीरव, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। कांग्रेस ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर राज्य में सरकार बनाने का दावा किया है। पार्टी का कहना है कि विधायक फ्रांसिस डिसूजा के निधन के बाद से बीजेपी अल्पमत में आ गई है और अब उसके पास 13 विधायक ही हैं। मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है। ऐसे में जो पार्टी अल्पमत में है उसको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि मौजूदा सरकार को बर्खास्त किया जाए और सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। मौजूदा समय में 40 सीटों वाले गोवा विधानसभा में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और उसके पास 14 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 13 विधायक हैं, जिसे निर्दलीय और अन्य दो पार्टियों का समर्थन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा ऑर्डर्न ने आज क्राइस्टचर्च में हमले में बाल बाल बचे लोगों से मुलाकात की। हमले के दौरान घायल हुए 11 लोगों की स्थिति अब भी बहुत गंभीर बनी हुई है। इन घायलों में 1-2 साल का बच्चा भी शामिल है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में हुए हमले में 39 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में इंडोनेशिया, जॉर्डन, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और सीरिया के लोग भी शामिल थे। मारे गए लोगों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। इसके अलावा इस हमले में मारे गए बहुत से लोगों के परिजन आज क्राइस्टचर्च के जिला न्यायालय के बाहर भी मौजूद रहे, जहां इस मामले के एक अभियुक्त को पेश किया गया। इस हमले में अपने पिता को खोने वाले यामा यामी नाम के एक शख्स ने हमें बताया। इन लोगों के पास दिल नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ बीते 30 साल से रह रहा हूँ। मेरे पिता यहाँ उससे भी पहले से रहते थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि न्यूजीलैंड में भी कभी ऐसा होगा। ये एक शांति प्रिय देश है। हम कभी भी किसी दूसरे देश में जाकर के ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे वहाँ के लोगों को परेशानी हो, ना ही हम अपने यहाँ ऐसा कुछ करते हैं। आप किसी भी संस्कृति या सभ्यता के हों, आप किसी के लिए परेशानी तो नहीं ही खड़ी करेंगे। ये थे यामा यामी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस की पुलिस ने येलो वेस्ट मूवमेंट को तितर बितर करने के लिए आज पानी की तेज बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। पेरिस में हजारों लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये लगातार 4th महीना है जब फ्रांस के लोग बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में राष्ट्रपति मैक्रों की आर्थिक नीतियों को लेकर काफी नाराजगी है। नवंबर में शुरू हुआ ये प्रदर्शन फ्रांस में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस सप्ताह हुए इस प्रदर्शन में करीब 29,000 लोगों ने हिस्सा लिया। जिम्बाब्वे में तूफान के चलते 24 लोगों की मौत हो गई है। देश की सरकार ने मारे गए लोगों की संख्या की पुष्टि की है। बीते दिन आया ये तूफान अपने साथ कई घर और पुल बहा ले गया। सरकार का कहना है कि मारे गए लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। अफगानिस्तान के कई मुद्रा परिवर्तक हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान में मुद्रा बदलने का काम करने वाले लोगों के अपहरण और उनके साथ मारपीट की खबरें आई हैं। इसी वजह से ये तमाम लोग गुस्से में हैं। पिछले हफ्ते काबुल के एक मुद्रा परिवर्तक की 6 साल की बेटी के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची के पिता ने बताया कि वे अपहरणकर्ता के साथ फिरौती की रकम के सिलसिले में बात कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी बेटी का शव प्राप्त हुआ। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए, हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-7001। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और विश्लेषक मलय नीरव, स्वागत है आपका।
धन्यवाद।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। इंडिया बोल में आज चर्चा का विषय निकल कर आया है क्रिकेट के मैदान से। लगभग 3 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय क्रिकेट टीम अपने ही घर में घरेलू मैदान में एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला हार गई। हराने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस श्रृंखला को क्रिकेट विश्व कप से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम को परखने और टीम की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए एक मौके के तौर पर देखा जा रहा था। जीत के लिए भारतीय टीम ने कई प्रयोग किए। क्या मौजूदा टीम कॉम्बिनेशन भारत को विश्व चैंपियन बना पाएगा? इस चर्चा में श्रोताओं को शामिल करने से पहले मलय जी, हम सुन लेते हैं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का इस बारे में क्या कहना है।
डेफिनेटली हम लोग एज ए एक्सक्यूज नहीं देखेंगे कि हमने अगर प्लेयर्स को ट्राई किया तो उसकी वजह से हम हार गए, क्योंकि जो भी इंडिया के लिए खेलता है आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे और परफॉर्मेंस देंगे। तो एज अ साइड कॉम्बिनेशन वाइज हम काफ़ी सॉर्टेड हैं, कंडीशन बेस्ड। मैक्सिमम एक ही चेंज वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा, बट उसके अलावा 11 जो हमें खिलाने हैं हम बिल्कुल क्लियर हैं उसके बारे में, और सेम 11 भी खिलाएंगे। और अगर परफॉर्मेंस ना हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप प्लेयर गलत ले आए। तो आई थिंक हमें ब्रेक डाउन वो करना चाहिए जो हमने डिसीजन ठीक नहीं ली। हम बहुत बैलेंस्ड हैं, अभी हार्दिक पांड्या भी टीम में आ जाएंगे, उनके आने से बैटिंग की डेप्थ, बॉलिंग की जो हमारी ऑप्शंस है और खुल जाती हैं। हमको पता है हमको कहां जाना है वर्ल्ड कप में एज अ कॉम्बिनेशन। 11 जो है हमारी काफ़ी क्लियर है अपने दिमाग में।
मलय जी, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के इस दावे पर क्या कहेंगे आप?
विराट विराट हैं, और जो कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो सवाल आपने उठाया है उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं, और वो सवाल ये है कि आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या। वो कहते हैं हमें पता है हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन टीम में कुछ कमियां ऐसी हैं जिसके लिए उन्होंने प्रयोग किए और वो प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुए दिखते हैं। ऐसे में जब आप इंग्लैंड जाएंगे, और वैसा इंग्लैंड जहां परिस्थितियां अलग होंगी, वहां कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो डे नाइट मैच हो, वहां तो न ओस होगी न ओस की चर्चा होगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे वहां जब काले बादल आकाश में होंगे, और उसके नीचे आपके गेंदबाज कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बल्लेबाज क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसके लिए जो रणनीति बनाई है श्योर कि उन्होंने बनाई होगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर हाँ, जहाँ तक कॉम्बिनेशन का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक टीम कॉम्बिनेशन के बारे में स्थिति उतनी स्पष्ट हो चुकी है जितने दावे किए जा रहे हैं।
शीशे के उस पार बैठे हैं अजीत सारथी, कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं, इशारा कर रहे हैं श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कीजिए। चलिए मलय जी, सबसे पहले श्रोता कौन है हमारे, उनसे बात कर लेते हैं।
जी, मैं कर्मेंद्र जाट बोल रहा हूँ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से।
स्वागत है आपका।
जी नमस्कार संदीप जी।
नमस्ते
जी। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो करारी हार शब्द प्रयोग किया जा रहा है, सबसे पहले तो ये मैं नहीं मानता कि भारतीय टीम की ये करारी हार है, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले जैसा कि हम देखते हैं प्रयोगों का दौर रहता है, तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान शायद ये देख लेना चाहते हैं कि हमारे जो प्लेइंग 11 है वो सबको परखना चाह रहे हैं, सबसे पहली चीज। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन इससे एक बात ये जरूर सिद्ध हो गई कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत नहीं है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। और रही बात कॉम्बिनेशन की, तो भारतीय टीम में क्षमता है कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, बशर्ते इसमें 2-3 सुधार होने चाहिए। जैसे कि बॉलिंग साइड और बैटिंग साइड में हमेशा लास्ट के जो 10 ओवर होते हैं उनमें हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए।
मलय जी, लगता है ये श्रोता क्रिकेट को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं, खेलते भी हैं, क्या कहेंगे आप?
इन्होंने अपने विचार दिए, प्रश्न तो पूछा नहीं, तो विचार से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूं। लेकिन फिर से मैं ये कहूंगा कि देखिए, प्रयोगों के दौर में अगर ऑस्ट्रेलिया ने जो प्रयोग किया उन प्रयोगों से मैं वो सफल रहा और भारत विफल रहा, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लगता है ना भारतीय क्रिकेट टीम पर कि आप प्रयोग कर रहे थे तो अभी तक नंबर 4 पर कौन खेलेगा, इस संबंध में आपके प्रयोगों का निष्कर्ष क्या निकला, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ना अंबटी रायडू चल रहे हैं, ना राहुल चल रहे हैं। आपने जो प्रयोग किए वो प्रयोग सफल नहीं हुए। एक विकेटकीपर को लेकर अलग स्थिति बनी हुई है कि अगर धोनी टीम में होते हैं तो दूसरा विकेटकीपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक अनुत्तरित हैं, और ऐसे में मुझे लगता है कि ये हार भारत को इसके लिए बहुत शर्म की ज़रूरत नहीं है, शर्मसार नहीं होने वाली हार थी, मगर हाँ ये आई ओपनर है। अब आँखें खुलनी चाहिए, अब हमें अपने आप को संभालना है, और अभी वक्त है। ऐसा नहीं है कि कल ही से मैच शुरू हो रहे हैं विश्व कप के, तो भारत को स्थिति और परिदृश्य जितना स्पष्ट जितनी जल्दी कर ले मेरे ख्याल से उतना अच्छा है।
मलय जी, विश्व कप से पहले आईपीएल के मुकाबले हैं, तो जाहिर है कि खिलाड़ी इसमें पूरा दमखम लगाएंगे। कोच रवि शास्त्री के मुताबिक भारतीय खिलाड़ी अपने आप को फिट रखें, ऐसा उनका कहना है, लेकिन कैसे आईपीएल में इतना दमखम लगाने के बाद फिट रख पाएंगे अपने आप को?
दो बात है यहाँ, फिटनेस का तात्पर्य दो चीज़ों से है। पहला तो ये कि आप जब थक जाते हैं तो थकने के बाद आप किस प्रकार का प्रदर्शन कर पाएंगे, पहला सवाल ये है। दूसरा ये है कि चोट लगने की आशंका जो होती है, खासकर जब इतना लंबा सीज़न आईपीएल का चलता है और जो आपके सितारे हैं अगर वो चोटिल हो गए तो उसके बाद एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो जो टाइमिंग है आईपीएल की वर्ल्ड कप के पहले, इससे निश्चित रूप से कई तरह की आशंकाएं लोगों के मन में होंगी, और रवि शास्त्री ने जो कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं कि ये एक ऐसा है, इस समय प्रार्थना की जानी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए और भरसक संभल कर चलना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो जाए, चोट ना लग जाए जिससे कि आपको आगे जाने में, विश्व कप में खेलने में दिक्कत आ जाए।
मले जी, आपने फॉर्म और प्रदर्शन की बात की, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। कौन है इस समय हमारे साथ?
हेलो
जी, अपना नाम बताएं।
मैं सीतामढ़ी से अंजनी कुमार सिंह बोल रहा हूँ।
स्वागत है अंजनी जी, रखें अपनी बात।
सर, मेरा कहना है कि पूरी भारतीय टीम थक चुकी है, जिसका प्रभाव खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ रहा है। आईपीएल आ रहा है, उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है। आईपीएल में सभी खिलाड़ी थके होंगे, लगातार क्रिकेट के कारण ऑस्ट्रेलिया से हार हुई है। मेरा कहना है आदेश जी का, इस पर हम उनका भी पक्ष लेना चाहते हैं कि आईपीएल से जो खिलाड़ी अलग रहे उसी का प्रदर्शन विश्व कप में सबसे अच्छा होगा।
अंजनी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार और विश्लेषक मलय नीरव। और मलय जी, जैसा कि हमारे श्रोता अंजनी कुमार बिहार से कह रहे थे, आपने भी नोटिस किया होगा कि शिखर धवन अपनी फॉर्म में नहीं है, और क्या ऐसा कुछ है कि खिलाड़ियों के साथ ये हो सकता है कि आईपीएल में तो आप शानदार फॉर्म में होते हैं लेकिन विश्व कप में चमक नहीं पाते? आखिर कोई खिलाड़ी अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदर्शन को कब तक बरकरार रखेगा, थकेगा नहीं?
देखिए, खिलाड़ी कोई भी हो वो मानव प्रजाति का है, इसलिए जब वो मनुष्य है तो उसे ये अपेक्षा रखना, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे शिखर धवन हो, कि वो हर मैच में चलेंगे और हर मैच में शानदार प्रदर्शन करेंगे। और विश्व कप अपने आप में एक लंबा टूर्नामेंट है, कौन कब चलेगा? शिखर धवन नहीं चल रहे थे, चले तो ऐसे चले कि शतक जड़ दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे पास खिलाड़ी हैं, जहाँ तक क्षमता का प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम में पूरी क्षमता है। और जहाँ तक थकान का प्रश्न है, तो दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जा रही है, छोटे जो वन डे इंटरनेशनल और 2020 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जा रही है, और आईपीएल में भी बहुत खेलते हैं लोग, लेकिन अब फिटनेस लेवल को हर खिलाड़ी सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अब वो स्थिति है जब हर कोई ये पता है कि हमें इतनी क्रिकेट खेलनी है, तो इसलिए वो कोशिश में रहता है कि अपना बेहतरीन प्रदर्शन करे, और ऐसा नहीं है कि बहुत थक गए हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं ना जो किताबों में लिखी होती हैं संदीप जी, उनमें एक ये भी लिखा है कि अगर आप जब टूर्नामेंट आता है, चाहे ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड कप फुटबॉल हो, उससे बहुत पहले पीक कर जाते हैं, अगर आप अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं टूर्नामेंट से बहुत पहले, तो टूर्नामेंट में फिर आपसे उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं हो पाता। ये सब बातें किताबों में लिखी बातें हैं, लेकिन क्रिकेट न तो कोई भविष्यवक्ता बता सकता है, न किताबें बता सकती हैं। ये वो दिन जो आएगा, उस दिन उस मैच में उस वक्त कौन सा खिलाड़ी क्या करेगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।
और मलय जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस भारतीय गेंदबाजी का डंका पिछले 2 साल से बज रहा था, अब वही गेंदबाज बेअसर से नजर आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, आपने देखा होगा, क्या ये बेवजह प्रयोग करने का नतीजा है या फिर कप्तान और कोच पिच को भांपने में नाकाम रहे हैं, जिसके आधार पर गेंदबाजों का चयन होता है।
बहुत सही कहा आपने। देखिए, परिस्थितियां जो होती हैं, जिस तरह की पिच होती है, जिस तरह का मौसम होता है, जिस तरह का तापमान होता है, जिस तरह ओस गिरने की संभावना होती है, इन सब बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब आपने सोचा कि जहाँ ओस गिरेगी वहाँ तो ओस गिरी नहीं रांची में, आपने सोचा कि मोहाली में ओस नहीं गिरेगी तो वहाँ ओस गिर गई, तो उसके बाद ये युजवेंद्र चहल अगर नहीं चल पाए तो ये कहना कि चहल नहीं चलेंगे, ये बहुत विषम परिस्थिति में नहीं चलेंगे, वो तो ठीक में बात समझ में आती है, लेकिन इंग्लैंड में तो ओस नहीं होगी, वहाँ तो डे नाइट मैचेस नहीं है, तो चहल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। जहाँ तक रही बात स्लॉग ओवर्स में, डेथ ओवर्स में बुमराह के प्रदर्शन की, जो उतना पैनापन उनमें नहीं देखा जैसा दिखता रहा है, तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि एक पुरानी कहावत है, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। तो उस हिसाब से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो। हाँ, टीम सिलेक्शन उस समय क्या होगा, मैच में परिस्थितियों को देखकर, खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल को देखकर तब तय करना होगा कि किस तरह के खिलाड़ी।
आपने क्लास की बात की, पिछले कुछ वर्षों में विराट कोहली ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने का गौरव हासिल किया है, उनके बल्ले से लगातार शतक पे शतक निकल रहे हैं, लेकिन क्या कप्तान के भरोसे ही टीम इंडिया विश्व कप जैसा महामुकाबला जीत सकती है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, लौटेंगे इस पर। उससे पहले श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
जय हिंद सर, मैं सूरज मिश्रा भटराघाट मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ।
जी मिश्रा जी, स्वागत है आपका।
मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय क्रिकेट टीम के पास वो पूरी क्षमता है जिससे वो वर्ल्ड कप विजेता बन सकते हैं। भारत के टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो 250 रन अकेले अपने दम पे बना सकते हैं, और बॉलर भी बहुत अच्छे खासे हैं, फील्डिंग की तो कोई बात ही नहीं, वर्ल्ड क्लास फील्डिंग है इसमें। लेकिन बात रही सर कि कप्तान को विराट कोहली को धोनी के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा इस वर्ल्ड कप में, तभी जाके कुछ हो सकता है। और मिडिल क्लास में जैसे ऑलराउंडर की बात करें हम, तो ऑलराउंडर की बात में एक चीज पूछना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा, सॉरी ये सुरेश रैना और युवराज सिंह और रविंद्र जडेजा, इनमें से किसी एक को अंडर 11 खिलाना होगा।
भले जी, आपने सुना हमारे श्रोता बिहार से, मिश्रा जी कह रहे थे कि धोनी और विराट कोहली में तालमेल और किस तरह से सब बनाया जाएगा, ये समीकरण
देखिए, मैं एक बात कह दूं आपको कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका टीम के प्रदर्शन पर जो प्रभाव होता है उसको सिर्फ रनों या विकेटों या स्टंपों से नहीं माना जाता, नहीं देखना चाहिए, उसकी प्रेजेंस जो होती है, उसकी उपस्थिति जो मैदान पर होती है, वो नई ऊर्जा भरती है, नई दिशा देती है। और धोनी तो क्रिकेट के वो पारस पत्थर हैं जो छू दें वही सोने में बदल जाए, और जो जिस तरह की शांति, जिस तरह का कामनेस उनका रहता है मैदान पर, जिस तरह से वो परिस्थितियों को भांप कर, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा नागपुर मैच में अंतिम ओवर किससे डलवाया जाए, डावाडोल सी स्थिति थी, उन्होंने शंकर को कहा कि दो और वो शंकर चल गए। तो धोनी का जो अनुभव है और धोनी की जो रणनीति बनाने की क्षमता है, उसमें कोई शक नहीं कि अभी विराट कोहली उनसे बहुत पीछे हैं। अगर दोनों साथ रहते हैं तो विराट को जो धोनी से समर्थन मिलता है, उस समर्थन के आधार पर टीम के प्रदर्शन को बिल्कुल बदल देने की ताकत टीम में आ जाती है। और इसलिए मैं मिश्रा जी की बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ कि धोनी का टीम में होना, और ख़ासकर अभी धोनी के क्रिकेट जीवन की सांध्य वेला नहीं आई है।
और ऋषभ पंत पर जो इतना भरोसा किया गया टीम इंडिया पर, क्या आपको लगता है वो भरोसे पर खरे उतर पाए हैं?
देखिए, भले ही वो एक दो इनिंग में ना चले हों, उन्होंने 24 गेंदों में 36 रन बनाए इसी एक मैच में, मगर मैं ये जानता हूँ कि वो एक युवा चेहरा है ऋषभ पंत, और उसमें ये करिश्माई करामात करने की क्षमता है, तेज़ गति से वो रन बना सकते हैं, उनके मौके अभी उनको और मिलने चाहिए। और हमें जो यंग फेसेस हैं, जो मजबूत नई टांगे हैं, उनको आजमाना होगा, उनको मौके देने होंगे। अगर दूसरा विकेट कीपर हम रखते हैं टीम में तो ऋषभ पंत को ही रखना होगा, दूसरा कोई विकल्प मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा विकल्प है हमारे सामने।
बीबीसी इंडिया बोल में इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मौजूदा भारतीय टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो भारत को एक और विश्व कप विजेता बना सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कौन है हमारे साथ इस समय? हेलो, लगता है संपर्क टूट गया है। हेलो, चलिए अगले श्रोता के पास जाने से पहले, मले जी, विराट कोहली को कभी तीसरे नंबर पर खिलाया जाता है, कभी वो चौथे नंबर पर आते हैं। हालांकि वो तीसरे नंबर पर जब आते हैं तो माना जाता है, देखा है ये, कि वो ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। लेकिन चौथे नंबर पर कौन खिलाड़ी होना चाहिए, ये बहुत उठा पटक मची रही है टीम इंडिया में। केएल राहुल या अंबाती रायडू कोई विकल्प हो सकता है इनमें से?
कोई बहुत अच्छा विकल्प अभी तक नहीं दिख रहा है चौथे नंबर पर, और ये बहुत बड़ी समस्या है। ये वो पहेली है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है, और मुझे नहीं लगता, हालांकि दिलीप वेंगसरकर ने ये कहा है अभी हाल ही में, आज ही कहा है बल्कि, कि विराट कोहली को चौथे नंबर पर खिलाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको तीसरे नंबर से विस्थापित करना कोई बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर आपके सलामी बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो पारी को स्थिरता प्रदान करने के लिए जो विराट कोहली का विराट रूप अब तक दुनिया ने देखा है, वो एक उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है प्रतिपक्षी टीम पर, इस बात को मत भूलिए। इसलिए विराट का तीसरे नंबर पर आना बहुत ज़रूरी है। रही बात चौथे नंबर पर कौन करेगा, तो मुझे लगता है कि अंबाती रायडू भले ही ना चले हों, लेकिन उनके पास अनुभव है, और उनका जो औसत अगर आप देखेंगे पिछले तीन मैचों में ना चले, तीन मैच जो उन्होंने खेले उसमें उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन फिर वही कहूँगा कि जो बेस्ट आपके पास है उसको, कोई कह रहा है कि शंकर को लगा के देखिए, अब ये प्रयोगों का दौर खत्म होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि आखिर कौन जाएगा वहां चौथे नंबर पर। और ये चौथे नंबर की समस्या अभी भी बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक नहीं, और इसका समाधान जो आपने बताया, मुझे नहीं लगता राहुल चल पाएंगे चौथे नंबर पर।
आपने विजय शंकर का जिक्र किया, यदि विजय शंकर को एक ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया जाता है, टीम में शामिल किया जाता है, तो उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं कराई जाती, ये सवाल कई श्रोताओं के मन में होगा।
नहीं, कराई जाएगी और कराई जाती है, और उन्होंने विकेट भी लिया, और ऐसे समय में लिया जब कोई नहीं चल पा रहा था, और मैच जिता के दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे ही कोई बात है। मगर हाँ, आपको शायद एक बात और बताएं कि हमें अगर विकेट कीपर दूसरा नहीं रखना है तो एक संभावना ये भी है कि हम एक पार्ट टाइम विकेट कीपर के रूप में उनका इस्तेमाल कर लें, और ना रखें ऋषभ पंत को। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि ऋषभ पंत को मौका, रिकी पॉन्टिंग ने भी आज यही बात कही है, उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं ऋषभ पंत, आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऋषभ पंत को रखना चाहिए, और ऋषभ पंत में तेज़ गति से रन बनाने की क्षमता है जिसका कोई। सौरभ गांगुली ने कहा है कि चेतेश्वर पुजारा को आप रख सकते हैं चौथे नंबर पर। सौरभ गांगुली ने कहा कि मैं जानता हूँ कि क्रिकेट के बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे विश्लेषक हमारी बात को, क्योंकि उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सौरभ गांगुली की बात को आप बिल्कुल खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय टीम में नई स्फूर्ति, नई जान, नई ऊर्जा, किलर इंस्टिंक्ट डालने वाला कप्तान सिर्फ एक और एक और एक सौरभ गांगुली रहा है।
चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले साथ साथ कुछ बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने से मैं टिप्पणियां लेते चलूं। विशाल गुप्ता लिखते हैं कि मौजूदा टीम के साथ विराट क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाएंगे, टीम में बड़े बदलाव की जरूरत है, अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल किया जाए, तभी कुछ हो सकता है। अनुरंजन पटवर्धन लिखते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से थकान और तनाव की वजह से भारतीय टीम हारती है, अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो खिलाड़ियों को भरपूर आराम की ज़रूरत है। विक्रम सबरभाल लिखते हैं, जडेजा, पंत, रायडू और भुवनेश्वर को बाहर निकाल दिया जाए तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप ज़रूर जीत सकती है, जडेजा, पंत, रायडू और भुवनेश्वर। इसके अलावा कमल किशोर चौहान लिखते हैं कि टीम में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए, किसी एक कॉम्बिनेशन पर भरोसा नहीं जताया गया, ऊपर से आईपीएल गाड़ी पटरी पर नहीं लगती। आपको लगता है मलय जी कि बहुत ज़्यादा प्रयोग करना और फेरबदल करना ये बहुत सफल नहीं रहा है?
देखिए, बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हुए हैं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, और सबको मौका मिलना चाहिए ये देखने के लिए कि कौन अपने फॉर्म को अच्छी तरह फॉर्म में है, कौन इस वक्त चरमोत्कर्ष की ओर, क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है। तो मौका जब तक आप नहीं देंगे तब तक कैसे देख पाएंगे? तो कॉम्बिनेशन को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही तो इतने ज़्यादा मैच खेले, वरना अभी आपने ऑस्ट्रेलिया को बायलैटरल सीरीज में वहाँ हराया था, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार भारत ने ये जीत हासिल की थी, और न्यूजीलैंड में 10 वर्षों के बाद बदला लिया आपने, जाकर उनको हराया, और फिर हिंदुस्तान में हार गए तो हम सवालिया निशान खड़े करने लगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी वक्त है, टीम मैनेजमेंट बैठेगी और जो विराट कोहली ने कहा है और बाकी लोग कह रहे हैं और बैठकर सोच समझकर फैसला लेगी। और एक मैच नहीं खेलना है कि इतनी बड़ी समस्या है, विश्व कप में भी अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, आपके पास खिलाड़ी हैं, तो आप उनको मौका देकर देख सकते हैं, खासकर वैसे इनसिग्निफिकेंट मैचेस में जिससे कि बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुझसे फेवरेट्स पूछें विश्व कप के, तो अगर चार टीमों में, क्योंकि भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता, मैंने किसी जन्म कुंडली नहीं देखी, सुनील गावस्कर ने कहा मैंने हाथ नहीं देखा विराट कोहली का, तो मैं कहता हूं कि इस वक्त चार टीमों की अगर हम बात करें, वो चार टीमें जिनसे विश्व कप जीतने की संभावना है, उन चार टीमों में भारत का सबसे ऊपर स्थान होगा। ये दूसरे देश के खिलाड़ी भी कह रहे हैं, पूर्व कप्तान भी कह रहे हैं, डिविलियर्स तक ने कहा है, जो खुद मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, विश्व कप जिताने की क्षमता रखते हैं, चोकर्स की टीम में थे, नहीं कर पाए, वो तो अलग बात है।
लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि भारत विश्व कप के लिए सबसे दमदार टीम है, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा है कि इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, न्यूजीलैंड है, और यहाँ तक कि अब तो ऑस्ट्रेलिया, जो भारत पर जीत हासिल करने के बाद एक तरह से उसने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस हासिल कर लिया है, और वार्नर स्मिथ वो वापसी कर रहे हैं, तो टीम को मजबूती मिलेगी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि भारत की राह अब उतनी आसान भी नहीं होगी?
देखिए, आपने जो कहा ना, ये उस पुराने प्रोवर्ब को ये सही ठहराता है कि ये गेम जो है वो घोर अनिश्चितताओं का खेल है, ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल है। इसमें कोई कुछ नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, मैं फिर से कहूंगा, भारत में विश्व कप जीतने की पूरी क्षमता है। दूसरे देश की टीमें ये मानकर चल रही हैं कि विराट कोहली एक अकेला वर्ल्ड कप जिताने की क्षमता रखता है, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि भारतीय टीम में अन्य खिलाड़ी भी हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस विश्व कप के बारे में या किसी विश्व कप के बारे में कोई भी कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, कोई जानता था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा जिस तरह से उसने जीत हासिल की? इसी तरह से इस बार भी डार्क हॉर्स में मैं पाकिस्तान को गिनता हूं। अगर आप मुझसे पूछे चार टीमें कौन हैं, मैं उनमें एक पाकिस्तान को ज़रूर रखूँगा। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत फिसड्डी टीम मानी जा रही थी, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ये जो अनिश्चितताएं हैं, ये क्रिकेट का अभिन्न अंग हैं, और इनके ऊपर कोई टिप्पणी करना अपने विश्लेषक होने के दावे पर पानी फेरने के समान है।
जल्दी से एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
हेलो
जी। जी
हाँ, मैं मोहन सिंह राम नारायण काजवा बोल रहा हूँ, काजवा ही धानी अजाड़ी कला जिला झुंझुनू राजस्थान से।
जी कहिए।
मेरा कहने का ये मतलब है सर, अगर देश इतने अगर टीम खेलेगी ना, तो इसको कोई हरा नहीं सकता। अगर मिलावट हो गई ना, तो गई भैंस पानी में।
ये जो मोहनलाल जी हमारे श्रोता थे, ये मिलावट की बात कर रहे थे, आप इसको समझ पाए ये कौन सी मिलावट की बात कर रहे हैं, ये किस तरह की मिलावट हो सकती है टीम इंडिया में?
नहीं नहीं, ये तो भैंस के दूध में गाय का दूध मिला रहे थे कि क्या कर रहे थे, भैंस को पानी में भेज रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, मिलावट की जहाँ तक बात है, इनका कहना जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बहुत सही कह रहे थे। इन्होंने ये कहा कि हम अपनी टीम की ताकत को पहचान कर अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रखें जिसमें हम अंत समय में इधर उधर दाएं बाएं ना करें और राह पकड़ कर एक चलें, तो हम निश्चित जीत तक पहुँचेंगे।
टीम इंडिया की इस समय सबसे बड़ी ताकत क्या देखते हैं आप?
विराट कोहली।
और सबसे बड़ी कमजोरी?
चौथे नंबर पर खिलाड़ी का नहीं होना स्पष्ट रूप से।
और ये कमजोरी दूर कर पाएगी टीम इंडिया और प्रबंधन, आपको लगता है?
कर लेगी।
कौन रिप्लेस कर सकता है चौथे नंबर पर?
चौथे नंबर पर मुझे लगता है कि अंबटी रायडू का एक अच्छा चांस है, अगर उस पर टीम भरोसा जताए और कप्तान भरोसा जताए, तो मेरा ख्याल ये है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और कौन से वो दो चार खिलाड़ी हो सकते हैं जिनके बिना ये विश्व कप भारत खेलने की कल्पना भी नहीं कर सकता?
देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हमारी जो पेस बैटरी है बहुत अच्छी है, कुलदीप, केदार जाधव, ये युजवेंद्र चहल, हमारी बॉलिंग, हमारे बॉलर्स मैच जिताते रहे हैं भारत को, और बॉलर्स ये विश्व कप भी जिताएंगे, इसमें कोई शक नहीं।
और गेंदबाजी के मामले में, बल्लेबाजी के मामले में कौन एक नया सितारा उभर कर आ सकता है इन आने वाले दिनों में, जो आपको लगता है अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर?
देखिए, नया सितारा तो ऐसा नहीं है कोई जो बहुत उभर कर सामने आए, लेकिन हाँ, शंकर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है एक ऑलराउंडर के रूप में। मैं रोहित शर्मा पर अभी बहुत हद तक सोचता हूँ कि निर्भर करेगा भारत का जो भविष्य है वो।
वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव के इस विश्लेषण के साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। कुछ ही देर में बजेंगे भारत में रात के 8। मले जी आप स्टूडियो आए, चर्चा को सार्थक बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले हफ्ते फिर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा के साथ इंडिया बोल में हाजिर होंगे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।